समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हर दिन की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार सिन्हा। हेलो प्रशांत।
Hello, listeners. Hello and good afternoon. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Prashant Kumar Sinha, and with me today is my co-host Jaya. And for you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. At least 58 Pakistani soldiers killed and several captured after Taliban forces retaliate to Pakistani airstrikes in Afghanistan territory. Kabul asks Islamabad to expel terrorists hiding in Pakistan.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा शांति समझौता हस्ताक्षर समारोह के लिए आज इजराइल और मिस्र का दौरा करेंगे।
Prime Minister Narendra Modi congratulates Dr. Patrick Hermine on winning Seychelles presidential elections, says bilateral relations will gain further momentum during his tenure.
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज शाम 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच रही हैं।
3 people arrested in connection with alleged gang rape of a medical student in Durgapur, West Bengal.
और भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में फॉलो ऑन दिया। पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन पर सिमटी।
And now, listeners, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about India's electronics leap. Listeners, electronics has become the engine of innovation and growth, powering economies and redefining the technological landscape. Across the world, the sector is driving advancements in communications, automation and connectivity, shaping how societies live, work and interact. India is the world's second largest mobile phone manufacturer.
बिल्कुल प्रशांत, भारत तेजी से एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है और पिछले एक दशक में इसके उत्पादन में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र ने न केवल अपनी औद्योगिक आधार का विस्तार किया है बल्कि पिछले 10 वर्षों में 25 लाख रोजगार भी सृजित किए हैं, जो रोजगार और आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। रणनीतिक सरकारी पहलों और मजबूत नीतिगत समर्थन ने स्थानीय विनिर्माण को और बढ़ावा दिया है, निर्यात का विस्तार किया है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण वैश्विक निवेश को भी आकर्षित किया है।
Yes, Jaya, as you had mentioned, with the ambitious vision of building a $500 billion domestic electronics manufacturing ecosystem by 2030-31, India is poised to emerge as a global technology leader, innovating for the world while creating vast opportunities at home. India has rapidly transformed into a global hub for electronics manufacturing, driven by initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat. Strong policy support, technological advancements and a skilled workforce have propelled both production and exports to unprecedented levels.
श्रोताओं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपने देश की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में भी बताना चाहते हैं जिस पर आप सभी को गर्व होगा।
In the last 10 years, electronics manufacturing in India has created 25 lakh jobs. India has attracted more than $4 billion FDI inflow in the field of electronics manufacturing since financial year 2020-2021. And the top 5 export destinations for Indian electronic goods in financial year of 2024-2025 are the United States, the United Arab Emirates, the Netherlands, the United Kingdom and Italy.
इतना ही नहीं, मोबाइल फोन निर्यात 2014 और 15 के 1500 करोड़ से 127 गुना बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ हो गया है। प्रतिवर्ष लगभग 33 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन होता है और देश भर में लगभग 1 अरब डिवाइस सक्रिय रूप से उपयोग में है। इसके साथ ही निर्यात 127 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 1500 करोड़ से 2024-25 में 2 लाख करोड़ हो गया है।
जया, सपोर्टिव मेजर्स सच एज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हैव सिग्निफिकेंटली बूस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। द रैपिड ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हैज़ क्रिएटेड सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री, व्हाइल इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर हैज़ बिकम डीपली इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
बिल्कुल प्रशांत, भारत की मोबाइल फोन क्रांति जीवन और आजीविका को एक नया रूप दे रही है। 85% से ज्यादा भारतीय परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन होने के कारण यह उपकरण आज बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। मोबाइल कनेक्टिविटी वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली वाहक बन गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे अधिक जुड़े हुए समाजों में से एक बन गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, फ्रॉम होम्स टू हॉस्पिटल्स एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज टू व्हीकल्स, दे एनेबल एफिशिएंसी, comfort and innovation. Every major sector today relies on electronics to improve performance, to enhance safety and to deliver better services. As technology evolves, the importance of electronics in driving progress across industries continues to grow.
जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो ये विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हर घर अब टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों पर निर्भर है। ये उत्पाद घरों में सुविधा, मनोरंजन और दक्षता लाते हैं। उपभोक्ता गैजेट्स की बढ़ती किफायती और विविधता लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम। दे पावर एवरी डिवाइस फ्रॉम अ सिंपल होम अप्लायंस टू कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सिस्टम। No manufacturer can produce consumer electronics, defense systems or medical devices without these essential parts. Other sectors are automotive electronics. As the world shifts towards electric and smart mobility, the demand for automotive electronics is rising sharply.
और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग ने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार का विस्तार किया है। ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर और डिजिटल मॉनिटर जैसे उपकरण अब घरों और अस्पतालों दोनों में आम हो गए हैं। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में नवाचार निदान, उपचार और रोगी देखभाल में सुधार ला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्वास्थ्य सेवा को बदलती दुनिया की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा आसान, सटीक और संवेदनशील बना दिया है।
Addressing the Indian Mobile Congress event this week, Prime Minister Narendra Modi highlighted India's rise in the electronics sector.
जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 times बढ़ चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है।
India's electronics and mobile manufacturing journey reflects ambition, innovation and global competitiveness. Schemes such as the Production-Linked Incentive, Electronic Components Manufacturing Scheme and the Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors have propelled domestic production, strengthened supply chains and boosted exports.
बिल्कुल, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति और मेक इन इंडिया पहलों के साथ मिलकर इन उपायों ने रोजगार का सृजन किया है, निवेश आकर्षित किया है और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है। निरंतर नवाचार और नीतिगत समर्थन के साथ देश वर्ष 2030-31 तक 500 अरब डॉलर का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम हासिल करने के और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है।
The Indian electronics sector isn't just growing, it's shaping the future of digital India.
और छात्रों, पेशेवरों और नागरिकों के रूप में अब समय आ गया है कि हम योगदान दें, नवाचार करें और इस रोमांचक यात्रा में भाग लें। आज विश्व गठिया दिवस भी मनाया जा रहा है। गठिया एक ऐसी स्थिति है जो जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन का कारण बनती है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। यह एक प्रगतिशील स्थिति है जो आमतौर पर उम्र के साथ बिगड़ती जाती है। हालांकि श्रोताओं, गठिया के कई प्रकार हैं, लेकिन ऑस्टियो अर्थराइट्स और रूमेटॉइड्स गठिया सबसे आम प्रकार है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं में गठिया के कुछ प्रकार जैसे कि रूमेटॉइड गठिया, आरए और ल्यूपस संबंधी गठिया पुरुषों की तुलना में विकसित होने की संभावना अधिक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऑस्टियोआर्थराइट से पीड़ित लगभग 73% लोग 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 60% महिलाएं हैं।
The objective of the day is to create awareness among people about rheumatic and musculoskeletal disorders and their prevention. The theme of the day this year, Achieve Your Goal. Talking to Akashvani News, head of the Department of Rheumatology at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Dr. Uma Kumar highlighted the importance of identification of symptoms of arthritis to treat them appropriately.
गठिया यानी कि आर्थराइटिस अचानक से भी हो सकती है और धीरे धीरे भी डेवलप हो सकती है। और अगर हम इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में अकड़न रहती है जो कि विशेष रूप से सुबह के समय महसूस होती है, जोड़ सूजे रहते हैं, जोड़ों के ऊपर लालिमा रह सकती है, उनके ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी गर्म महसूस होती है और बिना अधिक गतिविधि के भी असामान्य रूप से मरीज थका हुआ महसूस करता है, का बुखार रह सकता है, मरीज के मुंह में बार बार छाले आ सकते हैं, त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं और आंखों में और मुंह में सूखापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा भी गठिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो गठिया सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, बाद में जाके आप ये आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप समय रहते अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज उनके पास क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले कोलकाता चलते हैं, जहां बात करेंगे अलीपुर प्राणी उद्यान की, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और जिसे एक साल बाद जनता के लिए खोल दिया गया। इस उद्यान ने एक साल 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने स्मारक कार्यक्रमों, संरक्षण परियोजनाओं और संस्थागत प्रथाओं की आधिकारिक समीक्षा को प्रेरित किया है।
Recently, the 150th anniversary was observed with ceremonies, the unveiling of commemorative gates and the launch of a memorabilia volume tracing the zoo's history and firsts in Indian zoological practice. Local officials and forest department heads attended inauguration events that also opened renovated heritage spaces and a pair of new enclosures to visitors. As part of a push to modernize the site and diversify its appeal, the zoo and state authorities have announced a slate of new projects. Plans under discussion include a signature aquarium and marine museum on adjacent land, featuring elements such as a long underwater tunnel and interactive displays, which city planners and the zoo authority say would create a landmark attraction for Kolkata. Inside the zoo, proposals and early construction have been reported for an immersive aviary tunnel where visitors can walk alongside large glass enclosed habitats and an open-air butterfly garden intended to boost ecotourism and environmental education. These additions are aimed at offering safer, higher-value visitor experiences while promoting conservation awareness. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
Listeners, in Assam, a team of researchers from the Indian Institute of Technology, Guwahati, have developed a new method to produce human insulin using a safe and efficient bacterial system. As per the International Diabetes Federation, by 2050, diabetes may increase significantly. Let's hear more on this from our correspondent.
Diabetes is now turning into a menace, and it is one of the 6 major causes of death worldwide. In our country, the cases of diabetes is soaring at an alarming rate. For patients, particularly those with type 1 and many with type 2 diabetes, insulin is a life-saving hormone. Despite its widespread demand globally, the current methods are costly and inefficient. To overcome this, IIT Guwahati has developed a bioprocess technology using genetic, metabolic, and biochemical engineering for human insulin production using Pseudomonas fluorescens, a BSL-1 microorganism. This production process is simpler and more affordable as it can be produced in a soluble form, reducing the need for complicated purification steps. This new approach could produce insulin more affordable way. The new technology has been granted 2 Indian patents. In addition, these findings have been published in various international journals. Aminul Haq Joddar, Akashvani News, Guwahati.
श्रोताओं, दीपों का त्यौहार दिवाली काफी नजदीक है. आप सभी भी इसकी तैयारियों में जुटे होंगे. इस महीने की 22 तारीख को मनाए जाने वाले दिवाली के लिए तमिलनाडु भी पूरी तरह से तैयार है. हमारे संवाददाता बता रहे कि वहाँ क्या कुछ खास तैयारियां हैं.
Diwali, which is also known as Deepavali, is celebrated in a unique way in Tamil Nadu. The festival is primarily celebrated to commemorate Lord Krishna's victory over the demon Narakasura, symbolizing the triumph of good over evil and light over darkness. The death of Narakasura brought joy and relief to all beings. Hence, people lit lamps and burst crackers to celebrate the victory. The most important ritual in Tamil Nadu on Diwali day is early morning oil bath before sunrise, believed to be equivalent to taking a holy dip in River Ganga. Sesame oil is applied on the head, often blessed by the elders in the family, and then followed by a bath which symbolizes the cleansing of sins and start of a new prosperous phase. And elders in the family bless the youngsters. The elders in the family distribute Deepavali legium, a traditional herbal paste, before breakfast. This is a unique Tamil tradition. The legium is a herbal digestive paste made from ginger, pepper, cumin, ajwain, jaggery and ghee. It is the consumed first thing in the morning to aid digestion, since the day involves a lot of sweets and snacks later. In Tamil Nadu, Diwali is celebrated in an eco-friendly way. In Perambur village, Mayiladuthurai district, for over a century, people are refrained from using firecrackers during Deepavali to protect a sacred bat grove, Vaval Topu, where many bats live. The people of Kittambalayam, Coimbatore district, resolved to refrain from using crackers during Diwali and other festivals to protect birds, especially bats, in the large trees in their village. The festival of Diwali carries the spark of joy, warmth and togetherness in our hearts. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
Yes, listeners, and Cricket India had enforced a follow-on on the West Indies after dismissing the visitors at 248 runs in their first innings on the third day of the second test at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi today. The West Indies were trailing by 270 runs. West Indies were 166 for 2 in their second innings against India when reports last came in. Yesterday, India declared its innings on 518 for 5 with Yashasvi Jaiswal and skipper Shubman Gill scoring brilliant centuries.
अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
We are paying our tributes to freedom fighter, author, thinker and political leader Ram Manohar Lohia, who left us on 12th October in 1967. Lohia was born on 23rd of March 1910 at Akbarpur in the then Faizabad district of Uttar Pradesh.
His father was a great follower of Mahatma Gandhi, and at an early age itself, Ram Manohar leaned towards Gandhian philosophy. Lohia launched a campaign against textbooks which described Shivaji as a bandit king, and later joined protest against Simon Commission.
After completing graduation from Calcutta University, Lohia went to Europe for further studies. While in Europe, Lohia attended the League of Nations Assembly in Geneva. India was represented by the Maharaja of Bikaner, a well-known favorite of the British Raj.
Lohia took exception to this and launched a protest from the visitors' gallery. He sent several letters to editors of newspapers and magazines to clarify the reason for his protest. The whole incident made Lohia a recognized figure in India overnight.
Lohia helped organize the Association of European Indians and became the secretary of the club. The main focus of the organization was to preserve and expand the Indian nationalism outside India. Lohia wrote his PhD thesis paper on the topic of salt satyagraha, focusing on Gandhiji's socio-economic theory.
Lohia was attracted to socialism and helped lay the foundation of Congress Socialist Party in 1934. Lohia was arrested and sentenced to 2 years in prison when he wrote the article Satyagraha Now in Gandhiji's newspaper Harijan on June 1, 1940. He was mentally tortured and interrogated by his jailers, but in December 1941, he was released along with other leaders by British authorities in a desperate attempt to stabilize India internally.
During the Quit India movement in 1942, when prominent leaders were jailed, Lohia carried out operations from underground. Lohia, along with freedom fighter Usha Mehta, broadcast messages in Bombay for 3 whole months from a secret radio station called Congress Radio before detection. He revived the movement in Kolkata and later fled to Nepal to evade the British. However, he was captured in May 1944. Lohia was taken to a prison in Lahore, but under Gandhiji's pressure, he was released.
As India's tryst with freedom neared, Hindu-Muslim strife increased. Lohia strongly opposed partitioning India in his speeches and writings. He appealed to communities in riot-torn regions to stay united, ignore the violence surrounding them, and stick to Gandhiji's ideals of non-violence.
Lohia comforted the Mahatma on partition issue and remained beside Gandhiji as a son would remain beside a father in the hour of crisis in the aftermath of independence.
He was the first to introduce the idea of unification of some 650 Indian princely states together to form larger states, an idea which was later successfully executed by Sardar Patel, first Home Minister of India. After independence, Lohia made his indelible mark in democratic India as a great thinker and parliamentarian and a fighter for the cause of minorities, lower classes and women.
During his last few years, besides politics, he spent hours talking to thousands of young adults on topics ranging from Indian literature, politics and art. Lohia died on October the 12th, 1967 in New Delhi. He left behind no property or bank balance, but prudent contemplations.
श्रोताओं, आज ही जयंती है महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पेरिन बेन की. वो कैप्टन दादा भाई नरोजी की पोती थी. उन्होंने गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया. राष्ट्रीय स्त्री सभा के गठन में भी अहम भूमिका निभाई. मुंबई प्रदेश कांग्रेस की संघर्ष समिति की वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी. पेरिन बेन ने गांधी सेवा सेना के सचिव के रूप में काम किया. स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा पेरिन बेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
She did her early education in Mumbai and later she joined the University of Paris, from where she secured a degree in French. And while in Paris, she came into the circle of Bhikaji Kama and started participating in activities. After returning to India in 1911, Perin had an opportunity to meet Mahatma Gandhi and was influenced by his ideals. By 1919, she started working with him actively, and in 1920, she took to Swadeshi movement and started wearing khadi.
आज ही जयंती है सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी महिला और भारत की प्रमुख बंगाली कवि कामिनी राय की. ब्रिटिश भारत में स्कूल जाने वाली पहली लड़कियों में से कामिनी राय ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की. कामिनी राय ने महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए कई कविताएं लिखी. उनका लेखन सरल और बहुत ही सुरुचिपूर्ण होता था.
One of the first girls to attend school in British India, she earned a Bachelor of Arts degree with Sanskrit honours from the University of Calcutta in 1886 and started teaching there in the same year. In 1921, she was one of the leaders of the Bangiya Nari Samaj, an organisation formed to fight for women's suffrage. The Bengal Legislative Council granted limited suffrage to women in 1925, allowing Bengali women to exercise their right for the first time in the 1926 Indian general elections. She was a member of the Female Labour Investigation Commission 1922 to 1923.
श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पद्मश्री से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्रा का। काशी संगीत घराने को सितार वादन के क्षेत्र में पंडित रविशंकर के बाद पंडित शिवनाथ मिश्रा को 2022 में पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने बनारस वालों को समर्पित किया है। उन्होंने इस सम्मान को कला का सम्मान बताते हुए इसे काशीवासियों को अपने गुरुजन और बनारस घराने को समर्पित किया। पंडित शिवनाथ मिश्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं।
Listeners, Pandit Shivnath Mishra was also honoured with the UP Sangeet Natak Academy Award in 2004.
हम याद कर रहे हैं आधुनिक उर्दू शायरी के बहुत ही लोकप्रिय शायर निदा फाजली को उनकी जयंती पर। इनका पूरा नाम मुक्तिदा हसन निदा फाजली है, जो बाद में निदा फाजली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। निदा फाजली की शायरी की भाषा आम आदमी को भी समझ में आ जाती थी। ये शायर हिंदी के पाठकों के लिए भी उतना ही सुपरिचित हैं जितना उर्दू के पाठकों के लिए हैं। वो अपने पहले काव्य संग्रह लफ्जों का पुल की बेशतर नज़में, गजलें और गीत बम्बई आने से पहले ही लिख चुके थे। उनकी नई आवाज ने लोगों को उनकी तरफ आकर्षित कर दिया। फिल्मी दुनिया में उनका संबंध उस वक्त शुरू हुआ जब कमाल अमरोही ने अपनी फिल्म रजिया सुल्तान के लिए उनसे दो गीत लिखवाए। इसके साथ ही उन्होंने अपना और भी लंबा करियर शुरू किया। ये सुनते हैं उनके लिखे हुए एक गजल।
तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है।
लिसनर्स, बोर्न इन न्यू दिल्ली, निदा फासली grew up in Gwalior, where he studied English literature, and aged 18 years in 1965. After the partition of India, his parents and other family members migrated to Pakistan. However, he decided to stay back in Mumbai and contribute to the film industry of India. He was awarded the Padma Shri in 2013 by the government of India for his contribution to literature. Some of his famous film songs include Aabija, Tu Is Tarah Se Meri Zindagi Mein Shamil Hai, that we just heard, and Hosh Walon Ko Khabar Kya. Let's listen in.
Hosh Walon Ko Khabar Kya, Bekhudi Kya Cheez Hai. Hosh Walon Ko Khabar Kya, Bekhudi Kya.
Listeners, today is the death anniversary of renowned American country and folk singer, songwriter and actor John Denver, one of the most popular artists of the 1970s and one of the best-selling artists of that decade. He is amongst the most beloved entertainers of his era. Let's listen in.
You fill up my senses like night in a forest, like the mountains in spring.
Listeners, today is the birth anniversary of composer and guitarist Ehsan Noorani. He is part of the Shankar Ehsan Loy trio, which consists of Shankar Mahadevan, Loy Mendoza and himself. He started off as a freelance guitarist for many composers and studied music at the Musicians Institute in Hollywood from 1985 to 1986.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और प्रशांत को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार
नमस्कार।